الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة بقرة کی 114 نمبر آئے تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے پابندی لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہو تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک طرف تو یہودیوں کو ایک میسج دیا اور وہ یہ کہ ان کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی دور میں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا ہے اور یہ جرم عیسائیوں نے بھی کیا یہودیوں نے بھی کیا اور مشرکین مکہ نے بھی کیا جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عمرہ کرنے جانا چاہتے تھے تو راستے میں انہیں روک دیا گیا تو ہسٹری کے اندر یہی چیز عیسائی بھی کر چکے تھے جیسے بیت اللہ پہ حملہ کرنا وہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ وہ عیسائیوں کا فعل تھا تو یہودیوں نے بھی ایک بار حملہ کیا تھا اور نبیوں کو قتل کرنا ان کی ایک جرم قرآن پاک میں جا بجا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جنرل رول کے طور پہ کہا کہ یہ ظلم ہے اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں وَمَنْ أَظْلَمُ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں سے روکا جائے اور اس کو آباد کرنے کے بجائے اس کو ویران کرے اور ویرانی اس کی کیا ہے کہ اس میں اللہ کے ذکر سے عبادت سے روک دیا جائے اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں تو ان کو ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا مسجدوں کے اندر تو جس جو ایسے کرتا ہے یعنی کہ اس میں ذکر نہیں کرتا ہے ذکر کرنے سے روکتا ہے مسجدوں میں تو ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسجدوں کے آداب ذکر کی مسجد ایک بہت زیادہ رتبہ رکھنے والی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کے چند ٹکڑوں کو چوز کر لیا ہے اور ان کو اپنے نام سے منسوب کر دیا ہے ان کو مسجد کہا جاتا ہے اس لیے مسجد کے بہت زیادہ آداب ہیں جس کا تذکرہ لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا چند آداب گزرے تھے آج جو اور آگے وہ بات بڑھانی ہے تو مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کو گزرگاہ نہ بنائے یعنی کہ اسے پاتھ وے نہ بنائے اپنا کہ وہاں سے صرف گزرنے کے لیے اس کو استعمال کرے حضرت ادا سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب کہ لوگ اپنے پہچان والے کو سلام نہ کریں گے اور مسجدوں کو راستہ گزرگاہ نہ بنا دیا جائے گا تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تھا ایک تو سلام نہ کرنا اور دوسرا یہ کہ مسجدوں کو راستہ بنا لینا تو مسجد کو راستہ نہ بنائیں اور اگر لیٹس سپوز کسی وجہ سے گزرنا ہی پڑے کہ اور کوئی راستہ نہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو تو اگر وقت ہو تو مسجد میں کم از کم دو نفل ضرور پڑھ لے اگر وہ مکروہ وقت نہیں ہے اور خود بھی ٹائم ہے اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے کہ بالکل ہی مسجد کو ایک راستے کے طور پہ استعمال کرے یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے اسی طرح مسجدوں میں آوازوں کا بلند نہ ہو ہونا یہ بھی قیامت کی علامت بتایا یعنی مسجدوں میں آواز کو پست رکھنا چاہیے अली रजी अल्लाह तआला से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत में ये 15 चीज़ें होने लगेंगी तो उस उन पर मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पूछा गया वो क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, जब माल गनीमत मसलन वक्त और आम लोगों का माल ज़ाती मलकियत की तरह हो जाए, नंबर 2, अमानत अपना माल हो जाए, नंबर 3, ज़कात का अदा करना बोझ महसूस हो, नंबर 4, आदमी बीवी का फरमा बरदार हो जाए और माँ से कतअ ताल्लुक़ करे, नंबर 5, अपने यारों से अच्छा बर्ताव और बाप पर जुल्म करे, नंबर 6, मसाजिद में आवाज़ बुलंद होने लगे, और नंबर 7, कौम का सरदार और बड़ा जलील लोग होने लगे, नंबर 8, आदमी का इकराम उसके फितने से बचने के लिए किया जाने लगे, नंबर 9, शराब आम हो जाए, नंबर 10, रेशमी लिबास पहने जाए, नंबर 11, गाने बजाने वालियाँ आम हो जाए, नंबर 12, पिछले लोगों को अगले लोग बुरा भला लान तान करने लग जाए, तो उस वक्त सुर खांदी का धंसने और मस्त होने का इंतजार करो। तिरमी शरीफ की रवायत। तो इसमें निशानियां बताई क्यामत पे के करीब होने की, मुसलमानों पे अजाब की वजूहात की। तो उसमें से एक ये कि मस्जिदों में जब आवाजें बुलंद होने लग जाए, तो मस्जिद का इस्तेमाल लास्ट टाइम ये जिक्र हुआ था वो अल्लाह की इबादत है या जिक्र असकार है या वाज़ नसीहत है, यानी दूसरे को अल्लाह ताला की बात पहुंचाना या अपनी इबादत करना या जिक्र तलावत करना, ये इसके यूजेज है, या इल्म की महफिल वहां लगाना। बाकी इसके अलावा जो भी इस्तेमाल है वो मस्जिद के अदब के खिलाफ। तो उसमें ये कि ये जो कहा कि आवाज़ बुलंद होने लगेगी, इससे मुराद ये है, एक तो कि दुनिया की बातें करना, उससे शोर जो पैदा होता है कि कोई फ़ोन कॉल आ जाए उसमें बात शुरू कर दे, कोई आपस में डिस्कशन शुरू कर दे दुनिया के हवाले से, पॉलिटिक्स पे या किसी और चीज़ पे, या किसी जायज़ काम के लिए बैठा था, बल्कि इबादत के लिए बैठा था, फॉर एग्जाम्पल एतकाफ़ के लिए कोई मस्जिद में बैठा है, लेकिन उस मस्जिद के एतकाफ़ के दौरान जब खाना पीना हो रहा है या कुछ और जिक्र हो रहा है, उस दौरान वहां पे बातों का करना, ऊंची आवाज में बोलना, क्योंकि मस्जिद के इतकाफ के दौरान बातें करना, जरूरत के वक्त जरूरी बात करना जायज है, लेकिन उसको ऊंची आवाज में करना शुरू कर देना, और ये देखा गया है कि मस्जिद में शोर शराबा शुरू हो जाता है खाने पीने के वक्त, तो ये सारा मस्जिद के अदब के खिलाफ है। मस्जिद बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करना चाहिए मस्जिद के अंदर जैसे कि अल्लाह ताला के दरबार में बैठा हो, और उस जिसकी बड़े के दरबार में इंसान को भी बहुत मजबूरी में बात करनी ही पड़े तो पूरे एक लिहाज के साथ करता है, अदब के साथ करता है, तो ये ख्याल मस्जिद के अंदर बहुत हो। और ये आयत जो अभी पढ़ी, इसको एज अ यानी रूल ले ले कि अल्लाह ताला ने कहा इनको तो मस्जिद में डरते हुए दाखिल होना चाहिए, कि इनको नहीं दाखिल होना चाहिए सिवाय इसके कि डरते हों, यानी कि अल्लाह ताला ने इस तरह बात की कि इन्हें डरते हुए मस्जिद में आना चाहिए। तो डरते हुए से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला का अदब, उसकी रोब और उसकी हैबत, उसकी किबरियाई उसके ऊपर हावी हो, इस तरह से मस्जिद को, या आम मस्जिद की बात हो रही है, बेशक वो छोटी सी मस्जिद हो, बेशक वो कच्ची मस्जिद हो, मस्जिद तो उस जमीन को कहते हैं जो कि वक्फ कर दी जाती है अल्लाह की इबादत के लिए, तो उसमें स्ट्रक्चर का भी इंपॉर्टेंस नहीं है कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा खड़ा है या नहीं अच्छा खड़ा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर जमाने में कुछ लोग होंगे जिनकी गुफ्तगू मस्जिद में होंगी, अल्लाह पाक को इसे लोगों की अल्लाह पाक को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक और हदीस में है कि लोगों पर ऐसा जमाना आएगा कि उनके दुनियावी अमूर की बातें मस्जिद में हुआ करेंगी, तो ऐसी मस्जिद में मत बैठना, अल्लाह को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। तो ये नाराजगी का इजहार है कि अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, नाराजगी कि वो दुनिया की बातें मस्जिद के अंदर किया करेंगे। इसमें बहुत मोहतात होना चाहिए कि जरूरी बात याद आ जाए, अर्जेंट हो तो उसे शख्स को कहे बाहर ज़रा आ जाए। तो मस्जिद एक्चुअली वो डिफाइंड एरिया होता है जहाँ जो कि वक्फ की जगह होती है, कि कई बार मस्जिद का सहन मस्जिद नहीं होता, ऑल तो वो मस्जिद के ही तसव्वुर किया जाता है लेकिन बाय डेफिनेशन मस्जिद नहीं होता, यानी इतकाफ वाले को कई बार सहन में जाना ही मना होता है, तो कम से कम उस एरिया में आ जाए। सबसे बेहतर ये है कि बिल्कुल बाहर आ जाए, मतलब ये कि जहाँ जूतियाँ उतारते हैं वहाँ पे खड़ा हो जाए या उससे भी बाहर चला जाए, क्योंकि वहाँ पे भी अगर बात होगी आवाज़ मस्जिद के अंदर जाएगी, शोर होगा, तो पूरा इसका ख्याल करना चाहिए। और अगर बहुत मजबूरी है और नहीं बाहर भी आ सकता तो बिल्कुल कान में जरूरी बात करें, यानी बिल्कुल जैसे सरगोशी की जाती है। इसी तरह मस्जिद का एक अदब यह है कि उसमें छोटे बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए। हजरत माज रजी अल्लाह तआला की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद को छोटे बच्चों से बचाओ। इसी तरह एक और रवायत है, मस्जिद को बच्चों से और पागलों से बचाओ। और इसमें यानी कुरान का पढ़ना पढ़ाना भी है, वो सारा चीज़ इसमें शामिल है। मस्जिद जब भी बच्चा आएगा या पागल आएगा, ऑब्वियसली उसको आदाब का नहीं पता, उसको कोई इस चीज़ का फहम नहीं है कि ये क्या जगह है, क्या स्पेसिफाइड जगह है। तो ऐसा जो भी बच्चा, इसमें कोई एज लिमिटेशन एज सच नहीं है। हो सकता है कि 7-8 साल का बच्चा भी इतना शरारती हो कि वो अदब का ख्याल ना रखे, हो सकता है 3-4 साल का बच्चा भी इतना डिसेंट हो कि वो अदब का ख्याल कर ले, यानी कि बेअदबी कम अज़ कम ना करे, उसके पेशाब उसके कंट्रोल में हो और बातें ना करता हो और एक जगह बैठ जाता हो। तो डिपेंड करता है बच्चे की नेचर पे। तो रूल ये है कि जो अदब का ख्याल कर सके गालिब गवान उसको ले जाए, जो ख्याल है कि ये नहीं कर सकेगा तो उसको ना लेके जाए, जब तक कि उसको उस मस्जिद का कुछ ख्याल ना आ जाए या उसे अपने पर कंट्रोल ना आ जाए। इसी तरह मस्जिद का एक अदब है कि उसमें री ना खारिज की जाए, हवा ना खारिज की जाए। हजरत इब्ने जरी कहते हैं कि मैंने हजरत अता से पूछा कि जानबूझ के नींद में ना हो मक्के में या मोहल्ले की मस्जिद में हवा खारिज कर सकता है, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता। और इसकी वजह भी यही है कि उससे बदबू पैदा होती है। और बहुत सारी अहदीस हैं इस बारे में, और कुछ जिक्र भी की थी लास्ट टाइम, कि जिस चीज़ से बदबू पैदा हो मस्जिद में उसको उससे दूर रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो सारे खाने जिनसे मुंह से बू पै होती है, प्याज वगैरह, लहसुन या कोई सिगरेट, तो ये सारी चीज़ें खा के या पी के मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। और इसी तरह उसमें ये भी शामिल है कि अगर ऑप्शन हो, मतलब कि उसे है कि अंदाज़ा हो रहा है कि हवा खारिज होगी, तो उठ के बाहर जाए और फिर वजू करके दोबारा अंदर आए, ये अदब। लेकिन गलती से हो जाए या इरादत ना हो तब उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मस्जिद से भी बाहर जाके वजू करे, बिला वजू मस्जिद में नहीं बैठना चाहिए। जैसे अगली हदीस में आ रहा है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो नमाज पढ़ने के बाद उसी नमाज की जगह बैठा रहता है तो मलाइका यानी फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं हत्ता कि उसका वजू ना टूटे, वो उसके लिए अल्लाह से मगफरत और रहमत की दुआ करते रहते हैं। तो वजू अगर टूट जाए तो फौरन वजू के लिए चला जाए, ये तरगीब दी गई, बगैर वजू के मस्जिद में ना बैठे। और इसकी फजीलत ये बयान की कि फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफरत करते रहते हैं। और बहुत सारे उलमा ने इस चीज को कि मस्जिद में जान के हवा को खारिज करने को गुनाह करार दिया है कि ये गुनाह है जान के ये करना, तो इसका बहुत एहतमाम करें कि जान के कम से कम ऐसी हालत में मस्जिद से बाहर चला जाए। इसी तरह मस्जिद का एक और अदब है कि खाना उसमें क्या खाना खाया जा सकता है, ये पानी पिया जा सकता है। तो उसके बारे में रवायत कि हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में भुना गोश्त खाते, जब जमात खड़ी होती तो संगरेजों से हाथ साफ करके नमाज में शरीक हो जाते। तो इससे उलमा ने ये मसला निकाला कि मस्जिद में खाना जायज़ है, लेकिन उसमें वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि बाकी आदाब जिक्र हुए कि गंद ना मचे मस्जिद के अंदर, फिर वहाँ पे शोर ना हो, फिर इसके अलावा ऐसी चीज़ ना खाई जाए जिससे बदबू पैदा हो। तो इन सारे आदाब के साथ मस्जिद के अंदर खाना खाया जा सकता है, पानी या कुछ मशरूब पिया जा सकता है, इन सारे आदाब के साथ। और उसमें भी बेहतर ये होता है कि एतकाफ़ की नीयत कर ले, ये वैसे ही आदत होनी चाहिए कि मस्जिद में जब एंटर हो तो सोचे कि मैं एतकाफ़ करने की भी मेरी नीयत है, मस्जिद तो जा रहा हूँ नमाज पढ़ने या वैसे कुरान की तलावत करने या किसी और लिए, लेकिन साथ ये नीयत भी कर ले कि मैं एतकाफ़ भी करूँगा। क्योंकि एतकाफ़, इसको नफली एतकाफ़ कहते हैं, एक होता है सुन्नत एतकाफ़ जो कि रमज़ान में होता है और वो आखिरी 10 दिन किया जाता है, वो सुन्नत एतकाफ़ है। लेकिन उसके अलावा इतकाफ पूरे साल में कभी भी किया जा सकता है, किसी भी मस्जिद में किया जा सकता है और किसी भी वक्त के लिए किया जा सकता है। यानी कोई 1 मिनट, 2 मिनट या 1 दिन, 2 दिन, जिस तरह भी। तो 5 मिनट के लिए मस्जिद में जा रहा है तो ये नीयत करे कि मैं एतकाफ करूं की नीयत भी इसमें करता हूं, तो फिर ये चीजें बिल्कुल जायज हो जाती हैं, खाना पीना मस्जिद के अंदर में। इसी तरह मस्जिद में सोना, तो ये मना है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को सोता देखकर उठो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उठो मस्जिद में मत सो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया मस्जिद में सोने से, तो ये मकरूह अमल है, मना है इस तरह मस्जिद में सोना। लेकिन अगर कोई मुसाफिर हो या फिर कोई इतकाफ की नीयत करके चला जाए तो फिर जायज, अदरवाइज एक आम शख्स के लिए मस्जिद में जाकर सोना ये मकरूह है, नापसंदीदा। इसी तरह एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, हम मस्जिद में लेटे हुए थे, आपके हाथ में खजूर की शाख थी, उससे हमें मारा और फरमाया उठो मस्जिद में मत सो। और उसकी वजह भी ये है कि मस्जिद के अदब का इंसान को ख्याल नहीं रहता कि जागते में जो अदब कर सकता है वो सोते में नहीं कर सकते। सोते में इंसान को नहीं पता, कई लोग ऊंचा खराटे लेते हैं तो स्नोरिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी शोर शगफ पैदा होता है, अदब के खिलाफ होता है। इसी तरह हवा खारिज हो सकती है, तो वो सारी बातें हमने जिक्र कर ली कि मस्जिद के आदाब के खिलाफ हैं, तो इसलिए मस्जिद में सोना पसंदीदा नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स इतकाफ में उसे मस्जिद में ही रहना है तो ऑब्वियसली वो मस्जिद में ही सोएगा। इसी तरह कोई मुसाफिर अगर किसी वजह से आ गया और वहां उसने क्याम कर लिया है तो वो भी सो सकता है, लेकिन इतकाफ की नीयत कर ले और सारे आदाब का ख्याल रखे जो हमने जिक्र किए। इसी तरह मस्जिद के अंदर किसी चीज को बनाने के लिए ममानियत है, जिस तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मस्जिद में हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के साथ दाखिल हुआ तो एक दर्जी को मस्जिद में देखा, तो उनको निकाल के बाहर करने का हुक्म दिया। तो मैंने कहा अमीर उल मोमिनीन मस्जिद की निगरानी भी करता है और उसमें पानी भी डालता है, उसके दरवाजे को बंद करता है। आपने उसके जवाब में फरमाया, ए अबू अल हसन, मस्जिद को इससे दुनियावी काम से महफूज रखा जाएगा। तो एक दर्जी था तो उसको मना किया कि इसको निकालो, यानी दुनियावी काम इस तरह का ना करे, यानी कि जो कपड़े सीने वगैरह का काम ऐसा ना किया जाए मस्जिद के अंदर। और इसी तरह हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला जो मस्जिद में सलाई वगैरह करता मस्जिद से बाहर कर देते, और फरमाते मसाजिद को सनत व हिरफत, दुनियावी काम से बचाओ। और उसकी वजह वही है कि मस्जिद है इबादत, जिक्र, वाज व नसीहत और इनके लिए, ये इन बेसिक कामों के लिए मस्जिद बनी है, तो उनमें उन्हीं कामों को किया जाए। इसके अलावा अगर भी काम किया जाएगा तो वो मस्जिद के अदब के खिलाफ है। इसी तरह नापाक मर्द और औरत को मस्जिद में दाखिल होना मना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नापाक मर्द और औरत के लिए हलाल नहीं समझता कि मस्जिद में दाखिल हो। इसी तरह एक और रवायत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के सहन में दाखिल हुए, बुलंद आवाज से ऐलान किया, मस्जिद नापाक मर्द औरत के लिए हलाल नहीं है। तो इसमें उसूल ये है कि इससे मुराद नापाकी से जनाबत है। एक तो है कि वजू का टूटना, बगैर वजू के मस्जिद जा सकता है, ऑल दो वो अदब के खिलाफ है और एज सून एज पॉसिबल मस्जिद से निकले वजू कर सकूँ। ये है जनाबत की बात कि अगर मर्द या औरत जनाबत की हालत में हो तब वो मस्जिद में कतन दाखिल नहीं हो सकता, यानी कि बहुत बड़ा गुनाह है मस्जिद के अंदर जनाबत की हालत में दाखिल होना। हत्ता कि अगली हदीस में ये मेंशन है कि मस्जिद में चलना और गुजरना भी मना है इस हालत में। क्या हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, ए अली, किसी के लिए हलाल नहीं कि इस मस्जिद से जनाबत की हालत में गुजरे सिवाय मेरे और तुम्हारे। इसी तरह और वायात में भी ये मौजूद है। यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कई बार जिस तरह भी जिक्र हुआ कि सोने कई सूरतों में सोना अलाउड है, जैसे एतकाफ करने वाले के लिए, मुसाफिर के लिए अलाउड है कि मस्जिद में जाकर सो जाए। अब ऐसी हालत में अगर जनाबत लाहक हो जाए तो फिर क्या किया जाए, फिर तो मस्जिद के अंदर है इंसान। तो उस सूरत में दो चीजें जरूरी हैं। एक चीज तो कि फौरन मस्जिद से निकले, इसको डिले ना करे, ये ना सोचे कि मैं सोता रहूं और जब मैं आराम से उठूंगा तब मस्जिद से निकलूंगा, नहीं, उसी वक्त मस्जिद से निकलने की कोशिश करे। दूसरी चीज ये है कि मस्जिद के काफी अंदर कई बार सो रहे होते हैं लोग, तो अब मस्जिद का एक एरिया क्रॉस करना है और कहा कि चलना फिरना भी मना है इस हालत में मस्जिद में, तो उसका तरीका यह है कि कोई चीज साथ होनी चाहिए, जो खास तौर पर जो मस्जिद के अंदर सोते हैं उनको रखना चाहिए, कोई मिट्टी का एक ढेला वगैरह, और उससे तयम्मुम कर ले, यानी जब उठ के बिस्तर पे अपने बैठे हुए जहां सो रहे हैं उससे तयम्मुम करें और फिर मस्जिद क्रॉस करके उसको उससे बाहर जाए। तो ये तरीकाकार है अगर कोई मस्जिद के अंदर जनाबत किसी को लाहक हो जाए, अदरवाइज बाहर है तो उसको तो अलाउड ही नहीं है मस्जिद के अंदर एंटर होना, ये गुनाह है। लेकिन अब एक सूरत यह हो सकती है कि औरत के लेट्स फॉर डेज हैं और वो किसी वजह से मस्जिद में अपने शौहर को कुछ पकड़ाना चाहती है और मर्द फॉर एग्जाम्पल एतकाफ की हालत में वो बाहर नहीं आ सकता और ये अंदर नहीं जा सकती, तो क्या किया जाए? तो उसमें यह है कि हाथ के जरिए से पकड़ा दे, यानी कि हाथ गो के अंदर जाएगा मस्जिद के, लेकिन वो जायज़ है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मुझसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि ये चटाई मुझे दो, तो मैंने कहा मैं अपने मखसूस दिनों में हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे नापाकी तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये मफहूम है हदीस पाक का, तिर्मिज़ी शरीफ की रवायत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के जो हुजरे थे वो साथ थे मस्जिद के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे तो अंदर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इतकाफ फरमा रहे थे, तो अंदर से चीज पकड़ानी थी, तो उन्होंने कहा मेरे तो नापाकी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे कोई हर्ज नहीं कि अगर हाथ से कोई चीज पकड़ा दीजिए। मस्जिद के अंदर काफिर शख्स दाखिल हो सकता है। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ्ते सकीफ को जो मुशरिक थे मस्जिद में एक खैमे में ठहराया था ताकि नमाज और जिक्र तलावत को देख कर उनका दिल नरम हो जाए, और एक रवायत में कि लोगों ने आपसे पूछा कि आपने इनको मस्जिद में उतारा हालांकि वो मुशरिक हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन नापाक नहीं होती, इंसान नापाक होता। तो ये यहूदी ईसाई काफिर मुशरिक ये मस्जिद में आ जा सकते हैं, मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर बगैर जरूरत के लाना वो मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर किसी जरूरत की वजह से जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने सोचा कि उनके वो बात सुनेंगे कुरान की हदीस की तो उनके दिल पर असर होगा, तो इस मकसद से उनको ले आए, या किसी और काम से भी लाया जा सकता है कि मस्जिद का कोई काम हो, उसका कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो, उसकी इसी तरह की मेंटेनेंस का काम हो, तो इन कामों के लिए भी मस्जिद के अंदर लाया जा सकता है। इसी तरह मस्जिद के अंदर किबले की जानिब कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस जो के हिंड्रेंस पैदा करे तवज्जो में अल्लाह ताला की तरफ। हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में दाखिल होने के बाद बुलाया और फरमाया, मैं जब बैतुल्लाह में दाखिल हुआ तो मेंढे की सींगों को देखा, मैं उस वक्त भूल गया कि तुम्हें कहूं कि इसे छुपा दो, सो इन दोनों को छुपा दो, पर्दा डाल दो, इसलिए कि बैतुल्लाह किबले की जानिब कोई ऐसी चीज ना हो जो नमाज में खलल डाले। इसी तरह हजरत अनस फरमाते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर की के एक जानिब तस्वीरदार कपड़ा बतौर पर्दे के लटका का लगा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे तस्वीर को मिटा दो कि नमाज में ये खलल डालती है। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि नमाज में तवज्जो को मरकूज कर ले अपनी तरफ, कोई खूबसूरत चीज हो, कोई और नक्शो निगार हो, तो उस सारी का यही हुक्म है कि वो सामने नहीं होना चाहिए इंसान के। क्योंकि कई बार इंसान को होता है कि मैं जिस तरह नमाज करके पढ़ रहा हूँ, रुख करके पढ़ रहा हूँ कमरे के अंदर, तो फलां चीज़ सामने हो सकती है, फलां चीज़ हो सकती है। तो ये जहन में रहे, तस्वीर ना हो एक चीज़, और दूसरी ऐसी कोई चीज़ जो कि उसकी अटेंडेंस अल्लाह ताला की तरफ, जो उसकी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर दे, तो ऐसी कोई चीज़ ना हो। एक जनरल रूल है। इस तरह ही बहुत सारी रवायात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मस्जिद में जाने से मना फरमाया। तो इसलिए औरतों को चाहिए कि वो घरों में नमाज को पढ़ें और बगैर ज़रूरत के मस्जिद में ना जाएं। अगर ज़रूरत है, जैसे बाहर हैं ऑलरेडी और नमाज का वक्त हो गया, फिर तो पढ़नी चाहिए, पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर घर के अंदर हैं तो ऑप्शनल नहीं जाना चाहिए मस्जिद के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया, कई हदीसें ऐसी मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हदीस है कि अबू हमीद सादी की बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आई और ये दरख्वास्त पेश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ना चाहती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ना पसंद करती हो, मगर सुन लो, तुम्हारी नमाज घर के छोटे कमरे में बेहतर है घर के बड़े कमरे में पढ़ने से, और तुम्हारी नमाज बड़े कमरे से बेहतर है घर में पढ़ने से, और घर की नमाज बेहतर है मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ने से, और मोहल्ले की मस्जिद में बेहतर है मेरी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ने से। तो इस तरह से बात समझाई कि कंपैरिजन दिए कि एक घर का जो अंदर का छोटा सा कमरा है वो ज़्यादा बेहतर है बाहर के कमरों से, बाहर का कमरा बेहतर है घर से निकलने से मस्जिद जाने से, और मोहल्ले की मस्जिद बेहतर है मेरी मस्जिद में आने से। यानी जितना तुम घर से दूर होगी उतना, यानी जितना घर के करीब होगी उतना बेहतर है नमाज तुम्हारी। इसी तरह मस्जिद में जूते को कैसे हैंडल करें। हाँ, तो अब इब्न उमर रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि जूतों को मस्जिद के दरवाजे पे उतारने का तरीका इख्तियार करो। तो एक तो ये ऑप्शन हदीस से मिलती है कि दरवाजे पे उनको उतार दो। इसी तरह एक और रिवायत में है कि अब्दुल्ला बिन साहिब रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा फतेह मक्का के मौके पर मस्जिद हराम में नमाज पढ़ी और अपने चप्पल मुबारक को अपनी बाएं जानिब रखा। तो ये भी उलमा ने एक कदम निकाला कि चप्पल को राइट साइड या अपने सामने नहीं रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए अपने अगर साथ रखनी है अपने लेफ्ट साइड पर रखें। इसी तरह एक और रवायत में कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चप्पल जूते पहनने का इंतज़ाम करो, यानी पहना करो, जब तुम उसे पैर से उतारो तो अपने दोनों पैरों के दरमियान रखो, ना अपनी बदाएं जानब रखो, ना अपनी अपने साथी के दाएं जानब रखो, और ना अपने पीछे रखो कि तुम्हारे पीछे रहने वालों को तकलीफ हो। तो ये एक और अदब बता दिया कि राइट साइड पर भी ना रखो, और अगर लेफ्ट साइड पर रखोगे तुम्हारे राइट वाले के वो राइट पे हो जाएगा, यानी लेफ्ट वाले शख्स के वो राइट पे हो जाएगा, तो वो भी मुनासिब नहीं है। तो पीछे रखोगे वो जो पीछे है उसके सामने हो जाएगा, तो अपने दोनों पाँव के दरमियान रख लिया करो। तो ये भी एक तरीका है। इसी तरह एक और रवायत में ये भी है मनकूल है कि जैसे ये रवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुन्नत में से ये है कि जब आदमी बैठे तो जूते उतारे और आदमी अपने बगल में रखे, तो बगल में भी रख सकता है यानी अपने साथ भी रख सकता है, पाक होना चाहिए, कपड़े ना पाक ना हो, साफ सुथरा हो, या किसी पॉलीथीन के अंदर हो या शॉपर के अंदर हो जिससे कपड़े ना पाक ना हो। तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। अब डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे कि क्या बेहतर है, कि दरवाजे पे उतारना बेहतर है, लेकिन पीस ऑफ माइंड होना चाहिए कि ये ना परेशानी हो कि गुम ना जाए चप्पल, माल का नुकसान ना हो जाए, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हत्ता कि अगर मस्जिद हराम में कई बार जरूरत पड़ती है कि पता नहीं चलता का क्या करे तो साथ भी रख सकता है, ये कोई बुरी बात नहीं। जिस तरह इस हदीस में ये मनकूल है कि वो पॉलीथीन के अंदर अपने साथ भी रख सकता है, देखिए पीस ऑफ माइंड हो कि हाँ मेरे पास है, परेशानी नहीं होगी, और अगर कभी हुई हुई है तो इसका ख्याल करे कि माल के नुकसान से बचना भी जरूरी है, माल के और परेशानी से बचना भी जरूरी है। इसी तरह मस्जिद में जब दाखिल हो तो चाहिए कि 2 रकअत नमाज पढ़ ले। हजरत कतादा रजी अल्लाह तआला से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकअत नमाज पढ़ लो। तो 2 रकअत नफल पढ़ना, ये इसे तहियत तो मस्जिद कहते हैं। तो इसको मस्जिद का हक भी करार दिया कि मस्जिद का हक है। जैसे एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया करते थे कि मस्जिद का हक अदा करो। लोगों ने पूछा उसका क्या हक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो मत बैठो यहाँ तक कि 2 रकअत नमाज पढ़ लो, और दूसरी हदीस में उस वक्त है जब तक 2 सजदे ना कर लो। तो 2 रकअत पढ़नी चाहिए। अब क्या हर बार पढ़नी चाहिए या कभी कभी पढ़नी चाहिए? तो जितनी ज्यादा कर सके पढ़ ले। हर बार पढ़ना वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है, मुस्तहब जिसे कहते हैं, सवाब मिलेगा हर बार पढ़े। लेकिन मकरूह वक़्त ना, मकरूह वक़्त यानी असर से मगरिब का वक़्त या फजर के बाद का वक़्त, तो ऐसे वक़्त ना हो तो 2 नफल पढ़ लेने चाहिए। ये जरूरी नहीं है, जिंदगी में एक बार जरूरी है, मतलब जिंदगी में एक बार जरूरी है। और बेहतर है कि अगर मोहल्ले की मस्जिद है उसमें भी कम से कम एक बार जरूर पढ़ ले। इसी तरह किसी मस्जिद में गया है तो जिस तरह बताया 2 नफल वो तहियत मस्जिद होता है कि उस मस्जिद का एक अदब होता है, एक एहतराम होता है, उसका हक होता है। इसी तरह मस्जिद में दाखिल होने का तरीका यह है कि मस्जिद में राइट कदम पहले रखे, दाखिल होते दरवाजे पे भी और अंदर भी, सहन में भी और अंदर जाते हुए भी, और लेफ्ट कदम से निकले बाहर, एक चीज। दूसरी चीज की कुछ दुआएं मिलती हैं अहदीस में, जिसमें से मशहूर दुआ और मुख्तसर दुआ ये है कि दाखिल होते हुए पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतक, ए अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे हम पर खोल दे। और जब मस्जिद से निकले तो पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फजलिक, कि अल्लाह आपसे फजल का सवाल करता हूँ, आपसे आपके फजल का सवाल करता हूँ। तो ये मुख्तसर दुआ है, वरना और भी दुआएं मौजूद हैं मस्जिद से निकलते और दाखिल होते हुए। तो ये चंद आदाब थे मस्जिद के। तो कंक्लूड उसको मैं कर देता हूँ जो लास्ट सेटिंग में और इस सेटिंग में जिक्र किया उसका मुख्तसर है। तो एक तो चीज़ के दाखिल होने का तरीका जो जिक्र कर दिया कि मस्जिद पहले ये नज़रिया सामने हो कि मस्जिद है क्या, मस्जिद के मस्जिद हराम में अल्लाह ताला का घर है, ये सारी मस्जिदें उनकी उसकी बेटियां हैं। मतलब क्या कि जिस तरह अल्लाह ताला के घर का अदब है तो इन सारे घरों का अदब है, इन सब का की नस्बत अल्लाह ताला से। जब अल्लाह ताला ने कह दिया ये मेरे घर हैं और मेरी इबादत के लिए ये मखसूस हैं, तो अब अदब खुद ही वाजे हो जाता है कि इसका ऐसे ही अदब करे जैसे अल्लाह ताला का अदब होना चाहिए। यूं समझे कि जैसे एक साहिब बैत होता है, घर का मालिक होता है, वो घर में हो, उसके घर में जाके उस घर की नस्बत अब उस शख्स से होती है, तो उसका अदब किया जाता है, घर के अंदर भी ख्याल किया जाता है उस साहिब बैत और घर वाले की वजह से। मिसाल के तौर पर बड़ा है दीन के अतबार से, दुनिया के अतबार से, कोई बादशाह है, तो उसी तरह का ख्याल होगा। ये नहीं होगा कि अगर कोई जाए और उठा के चीज़ों को देखना शुरू कर दे उठा के, तो हर कोई शायद कहेगा कि इसको एटिकेट्स नहीं आते किसी के बड़े के घर में जाने। तो नस्बत से बात बदल जाती। एक दोस्त के घर जा रहे तो वहां पे अगर कोई ऐसी हरकत करे तो शायद इतना बुरा ना समझा जाए, लेकिन जब किसी बड़े के घर में जाता है तो फिर उसके आदाब का ख्याल किया जाता है। तो अल्लाह ताला के घर का भी यही इसी तरह अदब है। इसीलिए अल्लाह ताला का कि डरते हुए दाखिल हो, यानी आदाब का पूरा ख्याल उसको मलहूज रखते हुए दाखिल हो, एक दाखिल होते हुए कैफियत हो कि मैं अल्लाह के सामने जा रहा हूँ। तो जहन भी खाली करो, कल्ब भी खाली करो गैर से, और अब जाहिर से भी ऐसी कोई हरकत ना हो और बातिन से भी कोई ना हो, यानी जहन को भी ना उलझाए दुनिया के अंदर। ये वो कुछ चंद औकात हैं खालिस कर ले अल्लाह के लिए, दुनिया की भी कोई सोच ना सोचे। अगर कोई मसले चल भी रहे हैं तो उसे कहे कि ये बाहर है, मैं अंदर जा रहा हूँ, बाहर आके फिर देखूंगा इनका क्या करना। और इसीलिए चंद मिनट पहले जाना चाहिए नमाज से, कि होता क्या है कि एक वो थॉट प्रोसेस चल रहा होता है इंसान का, तो वो चीज मतलब कट ऑफ कर दे मस्जिद में जाने से पहले, तो थोड़ा सा उसको एक पीरियड मिल जाए सेटल होने के लिए। तो मस्जिद में पहले चला जाए, बैठ जाए, अपनी तवज्जो खालिस अल्लाह के लिए कर ले, तो उससे फिर नमाज में भी अल्लाह की तरफ तवज्जो रहेगी। तो अब इसी तरह है कि जैसे बड़े के घर में जाते हैं तो क्या अदब का ख्याल रखने होता है, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। तो पहली चीज के जूती उतारे, जिस तरह हदीस में जिक्र है कि जूता उतार लो मस्जिद में जाते हुए। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी मैं मेंशन कर दूं कि कई बार देखा गया है, खास तौर पे यहाँ पे मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कि कई बार देखा गया है कि जो पुलिसमैन होते हैं वो जूतों के साथ होते हैं। अच्छा, इसमें भी बदगुमानी नहीं आनी चाहिए कि क्यों जूतों के साथ है, या अदब का ख्याल नहीं, ऐसी बात नहीं है। जूतों को उतारने एक तो अदब की वजह से, दूसरा कि नापाक होते हैं आमतौर पर जूते। अगर कोई पाक जूतों के साथ मस्जिद के अंदर चला जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और किसी वजह से जाना हो कि जिसको जैसे उनकी वजूहत होती हैं कि बाहर बार बार आना, या उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक काम है, तो इसमें बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। यही गुमान रखना चाहिए इनके जूते साफ हैं और ये इसलिए लेके आए हैं क्योंकि पाक थे इनके जूते, और स्पेशल जूते होते हैं, मतलब कि जो कि उस तरह का यूजेज नहीं होता कि वॉशरूम भी जाए उसके साथ और दूसरे काम भी करें, तो इसलिए अच्छा गुमान उनसे रखना चाहिए। तो एक जूते उतारे, फिर राइट कदम से अंदर दाखिल हो, और लास्ट टाइम ये जिक्र हुआ था कि मस्जिद के बाहर होना चाहिए वजू खाना, बाहर की साइड पे हो, बैतुलखला बाहर हो, तो वहीं से फारिग होके वहीं से वजू करके और अपने आगे पहुंच के, अगर पहुंचने के सहूलत मौजूद हो तो अंदर मस्जिद में जाए। इसी तरह अगर इंसान मर्द या औरत नापाक हालत में है तो मस्जिद में जाना उसको मना है, बिल्कुल मस्जिद, और अगर अंदर मस्जिद के अंदर किसी वजह से नापाक हो गया तो फौरन बाहर आ जाए। इसी तरह अगर मस्जिद के अंदर वजू टूट जाए तो फौरन मस्जिद से बाहर निकल के वजू कर ले, और अगर मस्जिद के अंदर फील हो कि वजू टूटने वाला है तो अदब यह है कि मस्जिद के बाहर आके अपने वजू को तोड़े, यानी कि हवा खारिज करे, मस्जिद के अंदर ना करे, और अगर जान के ऐसा करेगा तो कई उलमा ने इसको गुनाह करार दिया। इसी तरह मस्जिद के अंदर सोने की बिलाज़ुर सोना मना है, अगर सोना हो तो उसके लिए इतकाफ की नियत कर ले या मुसाफिर के लिए, ये जायज है। इसी तरह मस्जिद में खाने पीने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इस तरह के खाना की वजह से मस्जिद का अदब खराब ना हो, गंद ना मचे और शोर वगैरह ना हो उसके अंदर। इसी तरह मस्जिद में किसी बदबूदार चीज़ को खा के जाना ये मकरूह है, मिसाल के तौर पे प्याज, लहसुन, सिगरेट पी के जाना, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे मुंह से स्मेल आती हो, लोगों को नापसंद हो वो स्मेल, तो वो चीज़ मना है। इसी तरह मस्जिद में थूकना और या नाक साफ करना, ये सब चीज़ें नाजायज हैं। मस्जिद में थूकना भी मना है और अपनी नाक को साफ करना भी नाजायज। इसी तरह जब पेशाब वगैरह करना या अपना खून निकलवाना मस्जिद के अंदर, ये सारी चीजें, या कोई और जख्म अपना साफ करवाना, ये सारी चीजें दुरुस्त नहीं है। और मस्जिद में पौधों को लगाना, यानी मस्जिद के अंदर जो मस्जिद की बाउंड्री है, वो भी जायज नहीं है कि मस्जिद के अंदर पौधों को लगाए। सहन की बात, कई बार सहन मस्जिद का हिस्सा नहीं होती, गो के मस्जिद की चार दीवारी में होती है, लेकिन वो उसके वो वक्फ ही नियत नहीं की होती, तो इसलिए उस पर लगा दिए जाते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर पौधे लगाना ये जायज नहीं है। इसी तरह मस्जिद में ऊंची आवाज से बोलना ये जायज नहीं है। गुमश कोई चीज गुम हो जाए उसको तलाश नहीं किया जा सकता, यानी ऐलान नहीं किया जा सकता फलां चीज गुम हो गई है। फिर अगर कोई साइल आए मस्जिद के अंदर तो उसको देने की गुंजाइश है, अगर वो मस्जिद के अदब का ख्याल करें। यानी कोई सवाल करते तो ये जायज़ है, सवाल कर सकता है, लेकिन मस्जिद के अदब का ख्याल करे, नमाज पढ़े, लोगों के आगे से ना गुजरे। इसी तरह के दूसरे आदाब जो होते हैं नमाज और मस्जिद के, अगर वो मस्जिद के कोने में बैठ गया है तो वो उसको दिया भी जा सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया भी है, और वो मांगना भी उसका जायज़ है। लेकिन कोई गुमशुदा चीज़ के बारे में है कि वो मस्जिद के अंदर उसका तस्करा नहीं करना चाहिए या लोगों को नहीं कहना चाहिए। जानवरों का, पागलों का, बच्चों का जो कि मस्जिद के अदब का ख्याल ना करें, उनको उनके लिए मना फरमाया कि मस्जिद में ना आए। इसी तरह मस्जिद के अंदर कोई इस सनत का काम करना, दुनियावी काम करना, वो जायज़ नहीं है। मस्जिद के अंदर जो असल काम है करने का वो जिक्र और इबादत है और इल्मी काम, क्योंकि हदीस में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मजलिस से थी और इनकी मजलिस में बैठ गए कि जो कि दीन सीख रहे थे, सिखा रहे थे, उसको पसंद फरमाया जिक्र और इबादत से भी। मस्जिद के अंदर हथियार लेकर जाना ये मना है, क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। तो किसी किस्म का हथियार जैसे पिस्तौल है या कुछ चाकू है वगैरह, वो ना लेके जाए। जिस सफर से आ रहे हैं उसके लिए बेहतर है कि वो जाके पहले मस्जिद में 2 नफल पढ़े और फिर अपने घर आए, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है, एक अच्छा ये सुन्नत अमल है। अगर कोई शख्स को बैठना पड़े मस्जिद में किसी भी वजह से, तो फिर वो फारिग ना बैठे, कम से कम 2, अगर मकरूह वक्त नहीं है, 2 नफल पढ़े और जिक्र इबादत में मशगूल हो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। मतलब कि फारिग ना बैठे, दुनिया की बातें ना सोचे, फोन कॉल्स ना करता रहे, इस तरह की दुनिया के और काम ना करता रहे। इसी तरह मस्जिद के अंदर मोबाइल के अंदर मैसेजेस को चेक करना गैर जरूरी, दुनियावी तौर पे हो सकता है किसी का दीन का लिंक हो लोगों से, मसले लोग मैसेजेस पूछते हैं, उस वो एक अलग इशू है, लेकिन रूटीन में मैसेजेस चेक करना या व्हाट्सएप देखना या कोई और चीज़ करना, ये सारी मस्जिद के आदाब के खिलाफ है। नमाज के औकात के अलावा मस्जिद को ताला लगाया जा सकता है, अगर हिफाजत की नीयत हो, कोई चीज़ें कीमती पड़ी हों तो ये इसकी इजाज़त है कि मस्जिद को ताला लगा दें, लेकिन बेहतर है कि मस्जिद बनाई ऐसी जाए कि उसका कुछ हिस्सा खुला रहे, यानी सहन वगैरह खुला रहे, ताकि कोई मुसाफिर या कोई इबादत के लिए आना चाहे तो आ सके, कम से कम सहन में बैठ सके। इसी तरह काजी वगैरह को या अमीर को मस्जिद में फैसले या की मजलिस नहीं लगानी चाहिए, जैसे मजलिस शूरा कहते हैं, अगर फैसले देने हों ऐसी मजलिस लगाना ये नापसंदीदा है। मस्जिद की जो दीवार होती है वो मस्जिद के हुक्म में होती है, यानी कि मस्जिद का ही हिस्सा होता है, उसका अदब भी वैसे ही होता है, और एक एतकाफ वाला मस्जिद के दीवार तक जा सकता है। मस्जिद में दाखिल होते बेहतर है जूतों को झाड़ ले और उसको दरवाजे पे ही रख दे, दरवाजे पे नहीं रखना चाहता तो अंदर लेके जाना चाहता है तो उसको यानी पाक हो या किसी पॉलिथीन के अंदर हो, और उसको अपने चाहे सुन्नत है कि राइट साइड पे रखे, लेकिन अगर उधर भी कोई शख्स खड़ा है लेफ्ट साइड पे रखे, लेकिन अगर उधर भी कोई शख्स खड़ा है तो उसको अपने टांगों के दरमियान रख सकता है, तो जो भी सूरत वहाँ के हालात के मुताबिक मुनासिब हो तो वो कर सकता है। कुछ उलमा ने इजाज़त दी है कि जूते आगे रख ले, लेकिन थोड़े आगे हों, मतलब कि सजदे की जगह पे ना हो, तो उसको अलाउ किया है अपने आगे रखने हों, लेकिन सजदे से की जगह से थोड़ा आगे हो अपनी, यानी कि उसकी नमाज की तवज्जो ना खराब हो जूतों की वजह से। मस्जिद की किसी चीज़ को ख़राब करना या उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाना, मतलब ये कि वो वक्फ है और उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेके आ रहे, तो ये चीज़ें भी नामुनासिब हैं और मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ हैं। और एक और अदब लास्ट टाइम जिक्र हुआ था कि मस्जिद को हद से ज़्यादा मुज़य्यन करना कि जो कि तवज्जो को ख़राब करने का बायस बने, तो ये नाजायज़ है, और बाज़ हदीस में तो क़यामत की निशानी बताया। तो इसके में थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि हद से ज्यादा नक्श नगार मस्जिद के अंदर जो कि तवज्जो को मरकूज करते हैं, खास तौर पे सामने की तरफ जहाँ किबले की तरफ जहाँ पे रुक करके नमाज पढ़नी है, तो ये मस्जिद के अदब के खिलाफ है। और जिसका जो कॉज है यानी कि क्यों खिलाफ है, इसलिए क्योंकि जो एम था मस्जिद बनाने का वो इबादत था उसमें ये हिंडर कर रही है। तो ये चंद आदाब जिक्र किए मस्जिद के। तो आदाब को जिक्र करने का मकसद यही होता है कि हमारी जिंदगी में एटिकेट्स आ जाएं, कि अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और हमारे काबरीन ने दीन के अंदर से पूरी जिंदगी के एटिकेट्स निकाल के सामने रख दिए, यानी कुरान और हदीस और सारा कुछ से अखज करके एक्सट्रैक्ट करके हमारे सामने रख दिए। और वो ऐसे हैं कि अगर हम उसका ख्याल करें तो हमारी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी सुकून में आ जाए। जैसे अभी कितने अदब जिक्र हुए कि जो दूसरों से लिंक्ड है अपने से नहीं, कि बदबूदार चीज़ को खा के जाना वो इसलिए सिर्फ है कि दूसरा तकलीफ में आएगा, उसकी नौ इबादत खराब हो जाएगी। और इससे रिलेट आप कर लें कोई भी अमल, कि नमाज के अंदर खड़े हो के गैर जरूरी तौर पर खंकारते रहना, नाक साफ करते रहना, या इस तरह का कोई भी अमल जो कि दूसरों को की डिस्ट्रैक्शन उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो तो वो नामुनासिब है। तो इन आदाब का ये फायदा है कि अल्लाह के ताला के हक भी पूरे होते हैं, लोगों के भी की सहूलत का बायस बनते हैं। तो इनको सीखना और सीख के फिर इसको सोचना भी, ये ना हो कि सीखें और इस महफिल खत्म होती है सारी चीज़ यहीं से निकल जाए, बल्कि उसको थोड़ा रिवाइज करना, जैसे किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज किया जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और फिर उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना और फिर एनालिसिस करना कि मेरे कितनी इंप्लीमेंटेशन हुई, कितनी इंप्रूवमेंट हुई, या वैसे ही जिंदगी चल रही है जैसे पहले थी। ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इल्म का आ जाना ये तो पहला स्टेप होता है, अमल को करना और अमल पे कायम रहना, उसमें इस्तकामत से जमे रहना, ये सारे वो स्टेप्स हैं जो कि हमारी जिंदगी में होने चाहिए। तो हमने अभी उसके पहली स्टेज पे हैं, अभी सिर्फ तस्करे चल रहे हैं, अभी बाकी स्टेप्स बाकी हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दीन पे अमल करना आसान करवा दे, उस पर इस्तकाम से जमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले थोड़ी देर मुराकबा कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, जो कुछ दुनिया में उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाए। जिक्र दो तरह का होता है, एक जुबान से और कल्ब से। जुबान से जिक्र तस्बीहात कुरान पाक की तलावत वगैरह, और कल्ब से होता है कि इंसान की रूह के अंदर एक कल्ब है वो भी अल्लाह की याद करता है। हदीस पाक में आता है, इसे जिक्र खफी कहते हैं। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला कहते हैं तुम दिन में मुझे याद करो, मैं भी याद करता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए कल्ब की तो मुतवज्जो हो जाए, सीने में कल्ब मौजूद है रूहानी कल्ब, और ये सोचें कि वो अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं, अल्लाह ताला का ज़ाती नाम ले रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जैसे कुरान में अल्लाह ने कहा वस्कुर इस्मा रब्बिक, के अल्लाह के नाम को याद करो, तो वो कर रहा है। और मैं ये सिर्फ सोच का अमल है, ना सांस से कुछ करना है ना ज़ुबान से, सिर्फ सोचना है कि मेरा कल्ब कह रहा है, एक इमेजिनेशन है। तो इससे इंसान के कल्ब मुनव्वर होता है, उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए करें। दुआ करें, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह पाक, आप ही दोनों जहानों के मालिक हैं, खालिक हैं, तमाम तारीफ़ें हैं, तमाम बड़ाइयाँ, तमाम अज़मतें, तमाम खूबियाँ, तमाम अच्छाइयाँ, तमाम पाकी आपके लिए हैं। या अल्लाह पाक, आपने एहसान फरमाया कि या अल्लाह पाक आपने दीन को महफूज फरमा दिया। या अल्लाह पाक, कितने लोगों को इसके लिए लगा दिया कि वो कुरान और हदीस को महफूज रखें। या अल्लाह पाक, उसको आसान करके हम तक पहुंचा दें। या अल्लाह पाक, आपने ऐसे बंदे पैदा किए जिन्होंने ज़िंदगी अपनी कपाई और लगाई और कुर्बानियाँ दी। या अल्लाह पाक, आज हमारे पास दीन आसान तर हालत में मौजूद है। या नफा उससे भी ज़्यादा सहूलत यह आपने फरमा दी कि फासलों को मुख्तसर कर दिया। पहले लोग सफ़र कर कर के जाते थे और दीन को सीखते थे, अब घर बैठे या अल्लाह पाक सहूलतें मौजूद हैं। या अल्लाह पाक हर चीज़ आम हो चुकी या अल्लाह पाक, और उसकी वजह यह है कि जब तलब करने वाले कम हो जाएं तो उस चीज़ को आम कर दिया जाता है, या जिसकी ज़रूरत ज़्यादा हो उसको आम कर दिया जाता है। या अल्लाह पाक आपकी तरफ से हुज्जत तमाम कर दी गई। या अल्लाह पाक यकीनन कमी और कोताही हमारी तरफ से है कि सब कुछ हमारे पास मौजूद है, लेकिन या अल्लाह पाक उससे हमने इस्तफादा हासिल ना किया, कोशिश ना की उससे फ़ायदा उठाने की। या अल्लाह पाक उसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगियाँ बेसकून हैं। या अल्लाह पाक हर शख्स या अल्लाह पाक दूसरे के लिए या अल्लाह पाक तकलीफ़ का बायस बन रहा है। या अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारी गफलत और कोताही को माफ़ फरमा दें, हमारी गफलत और कोताही को दूर फरमा दें। या अल्लाह पाक अपनी रहमत से आप भी हमारी आंखें खोल दें। या अल्लाह पाक हमारे रुख को ठीक कर दें। या अल्लाह पाक हम जा तो आपकी तरफ रहे हैं लेकिन हमारा रुख दुनिया की तरफ है। या अल्लाह पाक दुनिया की मोहब्बत भरी हुई है, नमाज में भी खड़े होते हैं तो या अल्लाह पाक तेरे गैर का ख्याल नहीं छोड़ता। या अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारी हालत ज़ार पर रहम का वाला मामला फरमा दें। और या अल्लाह पाक हमारी या अल्लाह पाक इस्लाह फरमा दें। या अल्लाह पाक हमारी इबादात को वैसा बना दें जैसा आप देखना चाहते हैं, हमारी अखलाकियात को वैसा बना दें जैसा आप देखना चाहते हैं, हमारे मामलात को ऐसा बना दें जैसा आप देखना चाहते हैं। हमें या अल्लाह पाक चलता फिरता कुरान बना दें, चलता फिरता या अल्लाह मुसलमान बना दें। या अल्लाह पाक जो गुनाह हो चुके, कोताहियाँ हो चुकी, गलतियाँ हो चुकी, अपनी रहमत से सबको माफ़ फरमा दें। या अल्लाह पाक और कोई या अल्लाह पाक हमारे पास अब ऑप्शन नहीं इसके सिवा कि आपके सामने हाथ फैला के माफ़ियाँ मांगें। या अल्लाह पाक जो जुर्म कर बैठे वो या अल्लाह पाक माजी का हिस्सा बन चुके हैं, नामा ईमान में दर्ज हो चुके हैं, अपनी रहमत से सबको माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक तेरी बख्शिश और या अल्लाह तेरे रहम पे का आसरा है, सहारा है। या अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारी मगफरत और बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह पाक अपनी रहमत से आइंदा भी हमें गुनाहों से महफूज ज़िंदगी नसीब फरमा दे। या अल्लाह हम गुनाहों से नहीं बच सकते जब तक आप ना चाहें, जब तक आपका फ़ैसला ना हो, जब तक आपका सहारा ना हो, जब तक आपका इशारा ना हो। या अल्लाह पाक अपनी रहमत से ये फैसला फरमा दीजिए, हमें गुनाहों से पाक ज़िंदगी नसीब फरमा दीजिए, हमारी तबीयत के अंदर गुनाहों की नफ़रत पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह गुनाहों के मौक़ों से हमें महफूज फरमाइए, गुनाह करने की ऑप्शन से हमें महफूज फरमाइए। या अल्लाह कभी हमें गुनाह का मौका मयसर ना फरमाइए, कभी हमें हमारे नफ्स के हवाले ना फरमाइए। या अल्लाह पाक जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक जो औलाद ना होने की वजह से परेशान उनको नेक सादे औलाद नसीब फरमाइए, इनकी औलाद है उनकी औलादों को नेक और सादे फरमा दीजिए, वालदैन की आँखों की ठंडक बना दीजिए। या अल्लाह पाक औलादों के गम से महफूज फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक जो रिज़्क़े हलाल जिनको मयस्सर नहीं उनको रिज़्क़े हलाल नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक जो जिस्मानी तौर पर बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक जो रूहानी तौर पे बीमार हैं उनकी रूहानी बीमारियों को दूर फरमा दीजिए। हम सबको आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाइए, आफ़ियत और ईमान के साथ मदीना तैयब में मौत नसीब फरमाइए, और आफ़ियत के साथ कब्र का मामला फरमाइए, आफ़ियत के साथ हशर का मामला करा करके बिला हिसाब बिला इस्तेहकाक जन्नत फ़िरदौस नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक जो लोग फौत हो चुके हैं उनकी मगफ़रत फरमा दीजिए, जिनकी मगफ़रत हो चुकी उनके दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक हमारे वालदैन और मशाइख की या अल्लाह पाक ज़िंदगी में बरकत पैदा फरमाइए, उनकी सेहत में बरकत पैदा फरमाइए। या अल्लाह पाक उनके इरादों में बरकत पैदा फरमा दीजिए, उनके फ़ैसलों में, उनके या अल्लाह पाक ज़िंदगी के जो मिशन है उनमें बरकत पैदा फरमा दीजिए। जो फौत हो चुके हैं उनकी मगफ़रत फरमा दीजिए और उनके दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान और कमज़ोर हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक जो ज़ालिमों के हाथों में पिस रहे हैं या अल्लाह पाक उनके निकलने की सबील पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक जो सैलाब में जिनका जानी माली नुकसान हो गया अपनी रहमत से अपने गैब के खजानों से उनके नुकसान का अजाला फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक हमें कभी किसी पे जुल्म ना, या अल्लाह पाक हमें जालिमों के हवाले होने से महफूज फरमा और हमें दूसरों पे जुल्म करने से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक कभी बेआसरा न फरमा, कभी बेसहारा न फरमा, कभी गैरों का मोहताज न फरमा। या अल्लाह पाक अपनी रहमत से जो सुना गया और जो कहा गया, या अल्लाह पाक हम सब के लिए फ़ायदेमंद सूद मत बना दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।